सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 1 से लेकर 3 तक। ये सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वो नहीं जानता कि वो प्रेम है या बैर। सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और ना करने वाले, सबों की दशा एक सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा, वैसे ही पापी की दशा। जैसी शपथ खाने वाले की दशा, वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसमें ये एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है, और मनुष्यों के मन में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं, उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। एक बात सबके साथ होती है, वे मरते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, बलिदान चढ़ाए या ना चढ़ाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, सब मरेंगे। जहां तक सुलेमान का संबंध है, ये भयानक बात थी। आपका सारा ज्ञान आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता, आपकी सारी संपत्ति आपको मृत्यु से नहीं बचा सकती। धनी मनुष्य क्यों मरते हैं? जैसे निर्धन मनुष्य मरते हैं। बुद्धिमान क्यों मरते हैं? जैसे मूर्ख मनुष्य मरते हैं। वे सब मरते हैं। आप मानवीय ज्ञान से मृत्यु से नहीं बच सकते, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया कि मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। यूहन्ना 11 अध्याय 26 पद, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। आप यीशु मसीह के साथ रहने और विश्वास करने के द्वारा मृत्यु से बच सकते हो, लेकिन मानव दिमाग, मानव ज्ञान आपको यीशु मसीह के पास जाने नहीं देता। इसके लिए परमेश्वर का प्रकाशन चाहिए, और यदि आप जीवन को मानव स्तर पर लेते हैं और परमेश्वर को मानव स्तर पर ढूंढते हैं, आप कभी जीवन ना पाओगे। परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट होना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 और 12 पद, वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। वे जो मुझ में रहते और विश्वास करते हैं, यीशु मसीह कहता है, कभी ना मरेंगे। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 4, उसको परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। मैं समझता हूं। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 5, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। जो लोग आत्मा के विनाश की शिक्षा देते हैं, इसे बाइबल आधारित प्रमाण बना लेते हैं। सभा उपदेशक की पुस्तक मनुष्य के तर्क से संबंधित है, परमेश्वर से अलग मनुष्य की ज्ञान शक्ति, और वे इस वचन को लेकर आत्मा के विनाश को प्रमाणित करते हैं। क्योंकि जीवते तो जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। कुछ भी हो, यीशु मसीह हमें बताता है कि एक धनी मनुष्य था जो प्रतिदिन सुख विलास के साथ रहता था और एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मरा और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता अब्राम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। यहीं पर यीशु मसीह कहते हैं, मृत्यु पश्चात भी चेतना रहती है। सुलेमान ने मानव तर्क और समझ के अनुसार कहा, लेकिन मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। वो व्यक्ति जानता था कि उसकी जीभ यंत्रणा भोग रही है। वो लाजर को जानता था। वो ये भी जानता था कि उसके भाई पृथ्वी पर अभी भी पापमय जीवन जी रहे हैं और वो अपने बीते पापमय जीवन को याद कर सकता था। वो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ ढूंढने के प्रयास में या तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को या सुलेमान की सांसारिक अवस्था को ग्रहण करे, सभा उपदेश्य की पुस्तक को बाइबल का सिद्धांत मान लेना गलत होगा। अच्छा होगा कि यीशु मसीह के वचन को माने। धनी व्यक्ति सुलेमान की आत्मिक पतन की अवस्था को काफी ज्यादा जानता था। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 6। उनका मृतकों का प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नाश हो चुकी, भूली जा चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। वे इससे गुजर चुके हैं, ये खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 7 से लेकर 9 तक। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में जीवन के सारे दिन बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। मित्र, यही आपको मिलने वाला है, इसलिए इसे ही प्राप्त करना, यही जीवन है। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 10। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। उनके लिए ये पवित्र शास्त्र से एक और प्रमाण है, कब्र में जाने के बाद न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि होगा। ये यीशु मसीह की शिक्षा से भिन्न है। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 11। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई मार्ग दिखाने वाला हाथ नहीं है, वे सब समय और संयोग के वश में हैं। सुलेमान का यही निष्कर्ष है। ये आत्मिक शिक्षा नहीं है, ये केवल सुलेमान की चीजों को देखने का निष्कर्ष है। जीवन समय और संयोग है, कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कितने तेज या धीमे हैं, कमजोर या बलवान हैं, बुद्धिमान या मूर्ख है, जीवन, समय और संयोग है। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 12 और 13। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में बचती और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। इन वचनों को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। सभा उपदेशक अध्याय 9 पद 14 से लेकर 18 तक। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े मोर्चे बनाए, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई नाश करता है। इस प्रकार निष्कर्ष में सुलेमान ने माना कि एक बुद्धिमान मनुष्य के कारण एक नगर बचाया गया।